नमस्कार, मेरा नाम संजू के बैनर्जी। आप तो मुझे जानते ही हैं कि मैं आपको सुनाता हूँ ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं आपको आज परिचय कराऊंगा एक एक्टर, एक मॉडल। वो बात करेगी अपने जीवन के बारे में, वो बताएगी कला जगत क्या है उसके लिए और वो क्या अनुभव करती है इस कला जगत के लिए। मैं बात करूंगा उनके सपनों के बारे में, मैं बात करूंगा उनके चाहत के बारे में, मैं बात करूंगा उसके कलाकृति के बारे में, मैं बात करूंगा उसके नृत्य के बारे में, मैं बात करूंगा उसके जीवन के बारे में, जिसे आप जान के अपने आप में एक नया अनुभव पाएंगे। आपसे परिचय कराता हूँ रूपाली सिंह।
थैंक यू सो मच संजू जी मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और इतना अच्छा मेरा परिचय देने के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी कि हम रहे या ना रहे, हमारी यादें हमेशा रहेगी। क्योंकि जानते हैं, जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है और इसका अंत कब हो जाए इसे किसी को पता नहीं। इसलिए हम जीवन के हर एक क्षण को बहुत ही प्रेम पूर्वक जीते हैं। तो चलिए, हम जानते हैं आपके बारे में। रूपाली जी, आप बताइए कि आप कितने वर्षों से मुंबई में रह रहे हैं?
तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं जो भी हूँ, मेरे तजुर्बे मुंबई शहर ने दिया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बुरा भी रहा है, बट बुरे की कौन बात करता है, हम तो अच्छे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना चाहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लाइफ है तो चुनौतियाँ नाना प्रकार की आती है और इन चुनौतियों से हमें डरना नहीं है। तो रूपाली जी, आपका जन्म कहाँ हुआ?
मेरा जन्म हुआ है बिहार में।
बिहार में
जी, छपरा जिला, मसरक डिस्ट्रिक्ट। और जस्ट बिकॉज मेरे पापा जी आर्मी में थे, तो हम, मेरे पापा जी तब पोस्टेड थे रुड़की में।
अच्छा।
उत्तराखंड, तो वहीं पे आज के टाइम पे तो वहाँ पे उनका खुद का घर भी है, मतलब मेरे पिताजी का। तो हाँ, ऐसे हम वहाँ पे रहे हैं। फिर तीन साल जैसे पापा जी का पोस्टिंग होता गया, वो ट्रांसफर होते रहे। आर्मी बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो बस गए रहे। फिर अपना अगर पूछेंगे कि मेरा अगर यहाँ से जाती हूँ तो घर पे कहाँ जाते हो, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा घर दिल्ली में भी है, रुड़की में भी और बिहार में भी है। तो मेरे मम्मी पापा जी जहाँ जब जिस टाइम पे रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं।
अच्छा, तो आप लोग कितने भाई बहन हैं?
दो बड़े भाई हैं मेरे।
अच्छा अच्छा।
और बड़े भैया मेरे सिलचर में रहते हैं, वो भी आर्मी में है।
अच्छा।
और हाँ, वो उनकी शादी हो चुकी है, तो वो वहाँ पोस्टेड है। उनकी एक बेटी भी है, अभी एक्चुअली दो बेटी है, अभी उनकी दो बेटी है। मेरे छोटे वाले भैया खुद का उनका बिजनेस है, वो ये चेन्नई में शिफ्ट है, पोस्टेड है
चेन्नई में शिफ्ट है
जी।
तो लास्ट अब कभी गए थे घर?
अभी मैं एक महीने पहले उन लोगों के साथ रामेश्वरम घूमने गई थी।
ओ, रामेश्वरम जाके हैं?
जी हाँ,
मैं भी घूम के आया रामेश्वरम।
क्या बात है,
सच
कि एक्चुअली मेरे भाई ने ही प्लान किया था कि चलो फैमिली ट्रिप पे जाते हैं, तो उसने मुझे डायरेक्टली ऐसे कॉल करके बोलते आ जा रामेश्वरम जा रहे।
नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने घूम लिया रामेश्वरम। रामेश्वरम एक बहुत सुंदर जगह है, हमारे भारत के बहुत प्राचीन जगह है। आपका बचपना कहाँ कटा?
मेरा बचपना, मैं जैसे बिहार में मेरा जन्म हुआ, उसके 17 दिन बाद शायद मेरे डैड के वजह से, मेरे पापा जी की वजह से हमें भटिंडा जाना पड़ा।
अच्छा, भटिंडा पंजाब।
क्योंकि मेरे पापा जी वहीं पे पोस्टेड थे
जी,
तो मेरा शुरुआत का 3 साल वहाँ पे गया है। फिर हम रुड़की आए, फिर रुड़की में मेरी स्कूलिंग हुई है।
अच्छा।
क्लास आर्मी स्कूल से पढ़े हम वहाँ पे, तो क्लास शायद 3rd तक मैंने वहाँ पे किया है।
अच्छा, भटिंडा में?
नहीं, रुड़की में। फिर हमारे पापा जी की पोस्टिंग दिल्ली हो गई।
अच्छा।
तो हम दिल्ली आ गए। फिर वैसे ही करके सिलचर, कोलकाता, पुणे, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे जाते रहे, और 3-3 साल पढ़ाई करके।
तो आप, मैंने इतने सारे शहरों में घूमे हैं, तो आपको लैंग्वेज का ज्ञान तो काफी होगा।
बिल्कुल।
आप बांग्ला बोलते हैं? तो बचपन आपका ऐसे ही अनेकों शहरों में कटा है
जी,
बहुत अच्छी बात है। तो फिर अपने पढ़ाई में कहाँ थे, क्या किया पढ़ाई में?
पढ़ाई में मैंने ऑल इंडिया रैंकर रह चुकी हूँ।
अच्छा।
फिर मैंने क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट भी दिया था लॉ के लिए।
ओके।
तो मेरा वहाँ पे कुछ उतना नहीं हो पाया था जितना मुझे चाहिए था.
ओके.
तो मैंने सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट दिया था लॉ के लिए ही.
ओके ओके.
तो फिर मुझे सिम्बायोसिस मिल गया था. और सिम्बायोसिस जब कॉलेज मुझे मिला था तो मैं एक्चुअली में बहुत खुश थी. और एक्चुअली मेरे बड़े पापा जी का उसमें थोड़ा हाथ था कि उन्होंने मुझे लॉ के लिए बहुत पुश किया था और मैंने किया. लेकिन एक टाइम के बाद जब मुझे वो कॉलेज भी मिल गया और मैं करने लगी, फिर क्या हुआ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई. अच्छा. मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा. तो वो जो 6 महीना मेरी जिंदगी का था वो बहुत हार्ड था, वो बहुत टफ था. बिकॉज मेरा सपना ही था कि मैं लॉयर बनूं और मेरा सब कुछ था कि मैं लॉयर ही बनूं. मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है संजू जी कि वो मुझे आके मुझे बोलते थे कि अब ये तो हो गया बेटा लेकिन आगे क्या. तो मुझे उन्होंने बोला एक ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए तुम्हें क्या करना है. और मैंने 12th किया है साइंस स्टूडेंट हूँ मैं 92.3% से. एंड फिर मैंने किया लॉ जो कि ड्रॉप आउट हो गया. और मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से सिम्बायोसिस पुणे. तो ये सारी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में. और जब ग्रेजुएशन हो गया तो मुझे ये पक्का पता था कि मुझे बीकॉम के लाइन में नहीं जाना.
ओके.
मैं अगर एक सपना फॉलो शायद नहीं कर पाई अपनी लाइफ में तो मेरा दूसरा सपना ही था एक्टर का. एक्टर का तो दूसरा सपना जो था एक्टर का. तो बहुत टाइम मतलब जब सेकेंड ईयर था मेरा बीकॉम में
तो ये एक्टिंग का कीड़ा कभी जगा या कभी काटा.
तो ये एक्टिंग का कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से थी एकदम. एक्टिंग का कीड़ा मतलब जो पैशन में कब बदला.
जब वो मैंने अंदर से वो बाहर कभी निकला.
हाँ. तो जब मैं सेकेंड ईयर बीकॉम में थी तो मुझे एक शूट आया था इंटरनेशनल शूट था.
अच्छा.
तो तब मुझे ना ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस चीज में
एक्टिंग में.
और वो शूट के बाद फिर मुझे शूट्स मिलते गए. तो फिर मुझे मुंबई बुलाया जाता था ऑडिशन के लिए. मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है मुंबई में. पुणे से चलो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था तो मुझे ना दिक्कत नहीं हुआ कुछ पैसों को लेके. बट हाँ मेंटल टॉर्चर जो बोलते हैं वो तो हुआ.
ऐसे आप मुझे बताइए विस्तार से.
मतलब विस्तार से अगर आप जानना चाहेंगे तो आप मुंबई आ जाइए, आपका ऑडिशन हो रहा है, आप शॉर्टलिस्ट है, आपको ये काम मिल जाएगा.
कन्फर्म बता दिया.
कन्फर्म हो गया.
फिर
आते थे ऑडिशन देते थे. क्या है मैडम कि किसी और को ले लिया गया है, क्या है मैडम कि ये चीज कमी हो गया है. तो वो लोग मुझे बुलाते थे. मैं कुछ लोगों का तो नाम नहीं लूंगी.
है कुछ लोग हैं.
कुछ लोग हैं
उसे रहने दीजिए, अपने ही आग में जलने दीजिए. देखिए क्या होता है कि जहां तक मेरी जानकारी है एज ए कला क्षेत्र में, क्योंकि ये कलाकृति की दुनिया जो है ये भगवान को समर्पित दुनिया है. याद रखिए कलाकृति को आप जब पंचम वेद में पढ़ेंगे तो हम जब कलाकृति करते हैं या कलाकारी करते हैं तो ईश्वर के लिए करते हैं. तो जो भी व्यक्ति गलत ट्रैक में लेके जाए कलाकृति की दुनिया को, इस कला सभ्यता को, तो इसका पनिशमेंट कौन देगा?
भगवान जी.
तो सोचिए, बोलते हैं ना एक कलाकार बनने आते हैं इस शहर पे, वो कितने सपने लेके आते हैं, वो कितने सच्चे होते हैं, उनका मन कितना सच्चा होता है, सोचिए ना. और यहाँ के जो लोग हैं, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर सकता हूँ, वो उनका कर्म उनके साथ है, लेकिन मैं जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं कि आप एक कलाकार को बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं और वो ऐसे आते हैं जैसे बस मुझे काम मिल गया,
बस
और मेरे नाम मिल गया. और वो जब वो नहीं मिलता है, ना वो काम मिलता है, ना वो नाम मिलता है, और ना ही वो पैसे मिलते हैं. तो सोचिए एक कलाकार कितने दुख के पथ में चले जाते हैं.
बिल्कुल. और मैं ये एग्री करती हूँ कि जरूरत नहीं है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आपको नहीं कमाना. आप उनमें से एक हो सकते हैं कि चाहे आपका फैमिली के पास बहुत पैसा हो लेकिन आपको अपने आप से कुछ करना है. तो जब वो जगता है और ये लोग ऐसे करते हैं तो आत्मा तो दुखी होता ही.
दुखी होता है. मैं बताना चाहूँगा कि भाई कलाकारों का सम्मान करें. कलाकार जो है अपने घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आते हैं और स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आप चीटिंग करके या विवानी करके या किसी को कॉम्परो का ये ऑफर देके आप उनको गुमराह नहीं, आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं.
यार मुझे ऐसा लगता है कि जो काम देने वाला होता है ना संजू जी,
हाँ,
वो ये सब बातें करता ही नहीं.
बिल्कुल.
वो आपका टैलेंट देखता है.
बिल्कुल.
जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी. मेरा मुंबई में सबसे पहला काम म्यूजिक लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे टैलेंट पे काम दिया है और मैं उनकी आभारी हूँ। और आज तक भी मैं बोलती हूँ कि शुक्रिया के ऐसे डायरेक्टर्स भी हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं 2008 में एक बांग्ला फिल्म के लिए एक डायरेक्टर के पास में गया, तो ना ही मैंने कोई ऑडिशन दिए। उसने कहा भाई आप इधर आइए, आप वहाँ खड़े रहिए, आप इधर देखिए, डन। और इमीडिएटली एग्रीमेंट बना के भाई आप हम लोग चार दिन के बाद शूटिंग पे जा रहे हैं।
बस बीट अराउंड द बुश नहीं करेगा।
नहीं नहीं नहीं, नहीं।
वो आपको काम है, एक बार देख लिया, दूसरा ऑडिशन ले लिया, तीसरा लुक टेस्ट ले लिया, मतलब जो भी हो अग्रीमेंट देंगे, पैसा देंगे एडवांस। जय श्री राम।
जय श्री राम। बिल्कुल सही बात है। तो और क्या क्या चुनौतियों का सामना किया आपने?
बहुत ब्लेस्ड रही हूँ संजय जी, मैं इस चीज में कह सकती हूँ बहुत ब्लेस्ड रही हूँ।
देखिए फैमिली का सपोर्ट
नहीं, फैमिली सिर्फ नहीं, इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी जो मेरे दोस्त बने आज
जी,
जो मेरा सर्कल है, वो भगवान की कृपा से इतना अच्छा है कि वो लोग ही मेरा सब कुछ है। और उन लोगों के वजह से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे इतना पुश मिलता है मेरे लाइफ में कि वो मुझे पुश करते हैं कि भाई उठो करो आगे बढ़ो। बोलते हैं ना कि बहुत लोग अपने ही दोस्तों का पैर खींचते हैं, मेरे दोस्त हमेशा मुझे आगे बढ़ाते हैं।
एक मित्र के रूप में ही तो भगवान मिलते हैं आपको और ना जाने कितने रास्ते दिखाते हैं। ज्यादा किससे क्लोज थे आप, मम्मी से या डैडी से?
दोनों से। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। ये दोनों ही, एक मुझे मार के प्यार करती हैं और दूसरा मुझे बचा के प्यार करते हैं।
तो कौन मारता है आपको और कौन बचाता है?
तो मैं बहुत दूर समझू जी।
उन दोनों योद्धाओं के नाम तो लीजिए, मम्मी और डैडी।
नहीं मैं तो इतनी वो थी ना, क्या बोल सकते हैं, जिद्दी। आज भी मेरी मम्मी बोलती है इतनी जिद्दी थी कि इसलिए पिटी थी। और आज भी हम हंसते हैं, बचपन में तो खाए बहुत।
आपका फेवरेट एक्टर कौन रहा बचपन में?
बचपन में पूछेंगे तो शाहिद इज अमेजिंग।
ओके ओके।
बट व्हेन आई सी शाहरुख खान टॉकिंग, मेरे लव्स कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ करने।
नहीं, बाकी शाहरुख खान साहब एक बहुत ही उम्दा एक्टर है, बहुत ही बड़े एक्टर है। आप याद रखिए कि जो हमारे भीतर जो आत्मा है वही तो परमात्मा से कनेक्ट होता है ना। तो जब आपके भाव बहुत सुंदर होते हैं, आपके बोलते हैं ना, आपके सपने बहुत सुंदर होते हैं।
सही बात है। वो बोलते हैं कि किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात
उसे मिलाने के लिए
मिलाने में
चाहती है। कोई फीमेल एक्टर कौन सी है बचपन में रही?
बचपन में मुझे प्रीति जिंटा जी बहुत प्यारे लगते थे।
प्रीति जिंटा,
प्रीति जिंटा बहुत
प्यारे। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रीति जिंटा। और जो बड़े एक्टर?
अमिताभ बच्चन जी।
अमिताभ बच्चन जी
बिल्कुल। पर शायद किसी ने उनको शायद आवाज के लिए कभी कुछ हो गया था, और आज सबसे अगर महंगी आवाज है तो शायद उन्हीं की,
बच्चन साहब की। सही बोल रहे हैं। आपको बता दूं कि बच्चन साहब की शायद ये दुनिया जानती है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपने जब बच्चन साहब की बात कही है तो एक वक्त था जब बच्चन साहब किसी रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए गए थे।
अच्छा।
और शायद रेडियो वाले को उनकी आवाज पसंद नहीं आई थी।
करेक्ट।
और वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि सबसे बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा पेड़ देके उनकी आवाज को लिया जाता
है। जाता
है। इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि हम और आप भी जीवन में सफर कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे हैं।
सफर कर रहे हैं तो इस सफर में ना जाने कितने मोड़ आते हैं, उसके बाद फिर मंजिल आती है।
जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं आज
जी,
मुझे इस आवाज के लिए बहुत बोला गया है। तो आज अगर मुझे कोई बोलता है तो मैं बच्चन साहब जी की ये बात याद कर लेती हूँ कि एक टाइम पे उनको भी किसी ने मना किया था
जी। कलाकृति की दुनिया में कार्य कर रहे हैं ना, तो कभी आप इस चीज को मत सोचिएगा कि आपकी आवाज में कोई कमी है।
बिल्कुल नहीं।
आपके हाइट में कोई कमी
नहीं
है, आपके लुक में कोई कमी है, आप में कोई कमी है। इस कमियों को कभी मत, मैंने अपने
ऊपर हावी होने
मत दीजिएगा, हावी होने मत दीजिएगा, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और कलाकार का कोई रूप नहीं होता, वो कलाकार विश्व रूप होते हैं। याद रखिएगा, आप कभी माँ बन सकते हैं, कभी बहन, कभी दादी माँ, तो आपके लिए क्या लुक, आप क्यों टेंशन लेते हैं? आप तो कलाकार हैं, आप तो विश्व रूप दिखा रहे हैं। आप एक रूप में तो नहीं है ना, आप तो मूर्ति तो नहीं है ना। तुझे भाई नहीं, मेरी भाई, मेरा रंग खराब हो गया नहीं। आप कभी काले बनेंगे, कभी गांव वाले बनेंगे, कभी शहर वाले बनेंगे, कभी चोर बनेंगे, कभी पुलिस बनेंगे, ना जाने कितने तरह की कलाकृति आप करेंगे। तो फिर डर कैसा, भय कैसा, कलाकार के रूप में आप अपने आप को जीवित कीजिए, चाहे वो आप जो भी है, आप कलाकार हैं, क्योंकि किसी इंसान द्वारा आप रचिता नहीं गए हैं, किसी इंसान द्वारा आप नहीं बनाए गए हैं, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, ईश्वर है। तो वो जब किसी को बनाता है वो कभी डिफॉल्ट बना ही नहीं सकता, आप उनके लिए एक अलग मॉडल है, ऐसा लीजिए।
बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की इस दुनिया में एक्चुअली,
समझे,
बहुत बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की। तो इस वे में किसी इंसान को मोटिवेट करता है
बिल्कुल,
और ऐसे बताता है कि वही है कि बहुत लोग हैं जो पीछे खींचते हैं,
नहीं उसको खींचते नहीं,
बहुत लोग हैं जो नहीं, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाते हैं। तो आप उनमें से एक, अच्छा लगा आपके साथ।
एलिफेंट नाम दे रहा हूँ, चलिए आज इस आप नाम को एक्सेप्ट कर लिए जीवन में। एलिफेंट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जानते हैं एलिफेंट जब किसी चाल में चलता है, किसी मंजिल की ओर बढ़ता है, तो उसके पीछे ना जाने सैकड़ों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन किसी एक कुत्ते की हिम्मत नहीं होती उस हाथी को जाके छूने।
थैंक यू सो मच संजू जी, क्या बात कही आपने।
तो आप अपने जीवन में जिस रफ्तार में जो करना चाहते हैं, जो करना करने के लिए आए हैं, उसे करते रहिए। लोग आप बुरे हैं तो भी आपके बारे में बोलेंगे, आप अच्छे हैं तो भी आपके बारे में बोलेंगे, तो उनके बारे में क्या करना। उस हाथी के ऐसे चलिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए, वो मस्त अपने आवाज में अपने मस्त चल रहा है। क्या हाथी क्या हर एक कुत्ते से जाके लड़ाई करेगा? नहीं करेगा ना, चल रहा है। तो उसी तरह से जो आप है, ईश्वर ने याद रखिए ना, जिस मॉडल में आपको बनाया है वो बेस्ट है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कार्य कीजिए। ना किसी को डराना है, ना ही किसी से डरना है।
मेरे लिए तो कर्मी पूजा है, मैं कृष्ण जी की ये इस बात से है, बहुत उस चीज को लेके चलती हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान सबके लिए है, अगर भगवान आज किसी और को दे रहा है तो शायद आज मुझे भी देगा कल को।
ये जानना बहुत जरूरी है, सबसे पहले जो कला कर रहे हैं वो ये परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि देखिए हमारा और आपका जो जीवन है ना, ये शून्य से स्टार्ट होता है,
शून्य पे ही खत्म
और शून्य पे अंत होता है। अब मैं बता रहा हूँ, जब एक माँ के पेट से बच्चा का जन्म होता है, उस बच्चों के लिए दूध के लिए कहीं बंदोबस्त करना नहीं पड़ता है, तो ये ईश्वरीय ज्ञान है। दूसरी बात है, तो उसे ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसे चाहिए। और जब उसकी मृत्यु होती, याद रखिएगा, जब वो मृत्यु के कगार पे होता है, अगर उसे कहे भाई आपको, आपके लिए बहुत बड़ा बंगलो दिया जा रहा है, बहुत रुपया पैसा दिया जा रहा है, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। तो हम इस लाइफ के बीच के जो नंबर लगाते हैं ना, 1 2 3, शून्य से स्टार्ट होते हैं और शून्य में अंत होते हैं। तो अब ये जो बीच का नंबर हमने लगाए, क्या सही नंबर लगाए? तो इसलिए, और दूसरी बात है कि आप बस कलाकृति करते रहिए, एकदम मस्त बोलते हैं ना, आराम से करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप जो है वही है,
वही है।
आप जब तक अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझेंगे, अपने अंदर से वो भाव लेके आइए, मैं एक उत्तम कलाकार हूँ, मेरी आवाज सबसे उत्तम है,
बिल्कुल है,
जो है मेरे जैसे किसी और का नहीं है, बस ये सोचिए।
मेरा कंपटीशन ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट संजू जी, मैं ही हूँ। और मेरे, मैं अपने आप में, मतलब इसको लोग अगर गलत वे से देखे, लोग तो एक्चुअली पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव पे ध्यान देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अगर गलत ढंग से अगर देखना चाहेंगे तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कॉम्पिटिशन कोई और है ही नहीं।
नहीं, नहीं, नहीं।
मेरा कॉम्पिटिशन तो आज जो मैं हूँ, कल जब मैं उठूंगी तो क्या मैं बेहतर हूँ कल से, मैं यही देख।
फीमेल एक्टर में प्रीति जिंटा, मेल एक्टर में अमिताभ बच्चन साहब, और अमरीश पुरी साहब को भी अच्छा लगे आपको?
अरे बाप रे बाप, तो क्या ही कहना, बाप रे, मैं बहुत खुश हूँ।
अमरीश पुरी साहब एक भारत के बहुत उम्दा, बहुत ही बुलंद आवाज, एक बहुत ही बड़े कलाकार थे, लेकिन उनकी कलाकृति मरी नहीं है,
बिल्कुल नहीं मरी है, और
उनकी आवाज आज भी जिंदा है। आज जब भी मैं उन्हें मिस करता हूँ तो उनके, बोलते हैं ना, यूट्यूब में या उनके फिल्में देख लिया करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके बायोपिक में वो ऐसे थे कि जब उनका बायोपिक आए तो वो पढ़ नहीं पाए, और जब मैं उनके बायोपिक को पढ़ा, आप रो देंगे उनके बायोपिक पढ़ेंगे। तो फिल्मों में इतना नेगेटिव कैरेक्टर करने वाला इंसान, इतना सुंदर, इतना हृदय से अच्छा इंसान कैसे हो सकता? आपने अभी तक काम कौन सा किया है?
म्यूजिक का पहला काम मेरा दरमिया, उसके बाद मैंने एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आरसीआर जी, तो रोहित, उनका नाम है रोहित चौधरी रैप स्टार, तो उनके साथ एक मैंने काम किया था साथ तेरे, वो एमटीवी हसल के फेम थे, उनके वजह से मैं तो यही बोलूंगी कि एमटीवी हसल अगर टू चलने का कोई मतलब पीछे बैकबोन है तो वो आरसीआर के उस गाने के वजह से ही है जो कि लोगों ने आज कल मतलब लोगों ने सुना होगा उसका गाना कि ऐ दिल है मुश्किल का रैप आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, वो उसने ही गाया था और उसके बाद ही हसल को लोग जानने लगे, एमटीवी हसल को लोग जानने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है कि वो लड़के के अंदर इतना था उसके वजह से ये चीजें और फिर से टू आ गया। अब तो चलो खैर लोग बहुत अच्छा किया एमटीवी हसल टू में, बट एमटीवी हसल वन की बात करूँ तो रोहित ये आरसीआर जो थे उनकी वजह से, और मराठी म्यूजिक वीडियोस किए हैं दो,
अच्छा
चल जाओ प्रेम सका वाला, और मैंने एक वेब सीरीज शूट की है, अभी एक शॉर्ट फिल्म किया है एज अ लीड एक्ट्रेस ही किया है। तो अभी नाउ लुकिंग फॉर मोर वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर मुंबई आई हूँ सब कुछ छोड़ के काम के लिए ही आई हूँ, और काम ही करना है बस मुझे, मेरा एकदम गोल है कि मुझे कहीं पहुंचना है और उसके लिए मुझे बस कर्म करना है, लोगों से मिलना है, काम करना है, बस फल की चिंता तो नहीं करनी। मुझे ये पता है कि मेरे अंदर जो ईश्वर है वो करवा लेंगे।
आपने कलाकृति की दुनिया चुनी है, जानते हैं मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही थी, दुर्भाग्य से मेरे पिताश्री इस दुनिया में नहीं है, 2009 में मैंने अपने पिताजी को खो दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन, आपका और हमारा जो जीवन मिला है ये एक भाग्य है।
बिल्कुल।
हम कुत्ते नहीं, हम बिल्ली नहीं, हम जानवर नहीं, हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, और इस जन्म में अगर हम कलाकार बन जाते हैं तो ये हमारा जीवन सौभाग्य है।
तो चलो तो शुक्र है महात्मा का या परमात्मा का बोलूंगी, परमात्मा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जो भी दिया है अच्छे ढंग से एकदम जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही, और वो आगे बढ़ा रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया उनका हर एक चीज के लिए शुक्रिया। मैं तो सुबह उठ के ही बोलती हूँ भाई आज मैं जिंदा हूँ ना, शुक्रिया। कितने लोग रात को सोते और उठ नहीं पाते,
बिल्कुल बिल्कुल,
और मैं उनमें से हूँ जो सुबह उठ के सोचते हैं कि आगे क्या करना है।
आपके पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो आप बिल्कुल बोलिए, आप अपने ये मैसेज आपके पापा तक भी जाना चाहिए।
मैं बोलते हैं कि मेरे पापा मेरे ईश्वर हैं, आज अगर शायद उनका सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि मैं एक बिहार फैमिली से हूँ और वहाँ पे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं।
जी हाँ,
उन लोगों ने, मैं पापा जी को तो क्या मम्मी को भी इंक्लूड करूंगी कि एक्चुअली मैं पूरी फैमिली को इंक्लूड करूँ।
नहीं नहीं, पहले मैं एक एक करके आऊंगा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके माताश्री हो या आपके पिताश्री हो, तो आप सबसे पहले अपने पिताश्री के बारे में बताइए।
तो मेरे पिताश्री, मेरे मैंने जैसा बोला कि वो मेरे ईश्वर, मतलब मैं, हमारा गांव ही बिहार, जो कि लोगों के नज़र में बहुत ऐसा है कि वहाँ के लोगों को तो अलाउड नहीं होता है नॉल, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अरे फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी, अरे क्या कर लेगी, अरे क्या कर लेगी, कैसे करेगी, सब पता नहीं है क्या। मेरे पापा ने किसी को ध्यान नहीं दिया है संजू जी, और उन्होंने मुझे बस बोला है ठीक है बेटा आप छोड़ दे, तो क्या हो गया आज, अगर वो उनको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ इसलिए, आप समझ रहे हैं, मतलब वो ये इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, ये इसलिए कि वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल लव।
पापा के लिए कोई मैसेज?
मैं अपने पापा से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं करती रहूंगी टिल द एंड, चाहे सपोर्ट हो या ना हो, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इन द एंड वो मेरे साथ ही है, और मैं मतलब मेरे हीरो हैं यार वो, और क्या चाहिए, ही इज माय रियल हीरो।
तो और अपनी माँ के लिए?
अरे मम्मा, नो कंपैरिजन, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, मैं जितनी भी डांट खा लूँ या जो भी, मम्मी से मेरी बात भी ऐसे हो जाती है कि मैं बहुत, वो मुझे डांट देती हैं, मैं फिर रो भी लूँ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर मुझे मम्मा चाहिए ही, मेरी माँ मुझे चाहिए, हर जगह चाहिए, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरी मम्मी, बहुत बहुत प्यार है।
और अपने भाइयों के लिए?
दोनों ही एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार करता भी नहीं है और ना कभी कर पाएगा।
और आपके बचपन के जो दोस्त स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त।
हाँ बिल्कुल, 15 साल वाले दोस्तों का आप याद दिला रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। शायद उनको भी पता नहीं मैं याद रहूंगी कि नहीं। मेरी एक दोस्त जरूर है नर्सरी क्लास।
अच्छा।
मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाती, लेकिन स्वाति जी, स्वाति है, स्वाति अब तो वो डॉक्टर बन गई है, बड़ी इंसान बन गई है, तो वो है। और एक जन है जो मेरी करीबी, मतलब बोल सकते कि मैं क्लास 6 से उसके साथ जुड़ी हूँ, सुरुचि झा। वो भी मतलब उसको तो मैं उठ के चल भी रही हूँ तो क्यों चल रही हूँ उसको पता हो जाएगा बिना बोले।
इतना प्रेम,
बहुत प्रेम, आज भी मेरे टच में है। आज भी अगर 4 दिन में मैंने उसको एक कॉल नहीं किया तो वो मुझे वापस आ जाएगा कि भाई हो गया तुम्हारा, अब आ जाओ। मतलब उसके ऊपर पूरा बहुत बहुत, सुरुचि झा तो मेरा पिलर है, बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स है मेरी लाइफ के।
अभी तक जो जर्नी आपकी रही है, बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी, और आने वाले समय में आप किन एक्टरों के साथ में काम करना चाहेंगे बॉलीवुड में?
सबसे पहले शाहरुख खान,
दूसरा
विक्की कौशल के साथ करना चाहूंगा।
विक्की कौशल के साथ करना चाहेंगे,
विक्की कौशल तो बहुत अच्छा एक्टर है।
आप कोई संदेश देना चाहेंगे आने वाले जो नए कलाकार इस बॉलीवुड सिनेमा में आ रहे हैं काम करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए?
बस एक चीज बोलूंगी, डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ एवर। घर वाले भी बोले ना कि नहीं होगा, उनको बोलो मम्मी मुझे इतना टाइम दो, मैं करके दिखाऊंगा। और सिर्फ तो ना, ये बहुत बात चलती है अट्रैक्शन की आजकल, मैं लोगों को बस एक ही चीज बताऊंगी, अट्रैक्ट ऐसे ही नहीं होता है। अट्रैक्शन वर्ड बना है 2 शब्दों से। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आप कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा लोगों से यही विनती बोलिए कि लाइफ में एक्शन लीजिए और आप भगवान को याद कीजिए, आप बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे। आज मैं अगर जहां पे हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने आगे पहुंच जाऊंगी। आज मैं जहाँ आपसे बात कर रही हूँ, अपने लाइफ के बारे में बता रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कोई मुझे स्टूडियो में बुलाएगा, मेरे से पूछेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीजें। बट एक टाइम आया था जहाँ पे मुझे लगा था मैं करूंगी, बट उस टाइम से लेके आज तक मैंने अपने ऊपर गिव अप नहीं किया ना मैं कभी करूंगी।
अच्छी बात है, बस आपने तो अपने जीवन की कहानी बहुत सुंदर तरीके से कहा जो अभी तक बीत चुकी है आपके जीवन में। चलिए मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ताकि आप एक उत्तम कलाकार बने।
शुक्रिया आपका।
एक उच्च कलाकार बने, आप अपने सपने पूरा करें, अपने माँ बाप के सपने पूरा करें, और आप इस भारत की बेटी हैं।
बिल्कुल,
इस भारत का सपना पूरा करें।
बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपाली जी कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। ईश्वर करे हम आपको एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में जल्दी देखें।
संजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज बुलाया है और आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं आज यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें लेके जा रही हूँ कि एक इंसान जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और इतना पॉजिटिविटी देके भेज रहे हैं कि देखते हैं एक दिन कभी ना कभी आप देखेंगे मुझे बड़े स्क्रीन पे। और फिर भी मैं आपको, और फिर भी आप बोलेंगे कि अरे रूपाली जी, और मैं बोलूंगी अरे संजू जी। सेम।
नहीं 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 नहीं, देखिए जो मेहनत कर रहा है वो सफल हो गई, मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते। चुनौतियां जीवन में आएंगे आपके, समय कभी खराब होगा कभी अच्छा होगा, लेकिन आप खराब नहीं होंगे, याद रखिएगा। समय खराब हो सकता है, आप नहीं, ठीक है, फिर समय अच्छा हो जाएगा। तो चलिए रूपाली जी आप अपने कार्य में लगे रहिए। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, मैं जल्द लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ में। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें।